आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरी हवाबाजी से मुतालिक दिल्ली ऐलानिया मंजूर किए जाने का ऐलान किया है और कहा है कि भारत इस दहाई के आखिर तक एविएशन का एक सरकर्दा मरकज बनने की समत गामजन है। ओडिशा सरकार ने फौजी खिदमात में साबिक अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन फराहम करने और उम्र में 3 साल की रियायत देने का फैसला किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले चंद रोज के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शदीद बारिश होने की वार्निंग जारी की है। भारत और चीन ने बकिया इलाकों से भी फौजियों को पूरी तरह पीछे हटाने के सिलसिले में तेजी के साथ काम करने और अपनी कोशिशें दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। अमरीका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए मदद करने की बिना पर चीन की 3 कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं और चेन्नई में जुनूब एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 9 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरी हवाबाजी से मुतालिक दिल्ली ऐलानिया मंजूर किए जाने का ऐलान किया है। कल नई दिल्ली में दूसरी एशिया बैरुल काहिल वजारती कॉन्फ्रेंस के अख्तितम पर इस ऐलानिये को इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। यह ऐलानिया एक जामे खाका है जिसका मकसद एशिया बैरुल काहिल खत्ते में शहरी हवाबाजी के शोबे में उभरते हुए चैलेंजों से निमटने और पायदार तरक्की को फरोग देने के साथ साथ इलाकाई इश्तराक को वसत देना है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस दहाई के आखिर तक एविएशन का एक सरकर्दा मरकज बनने की समत गामजन है और आने वाले वर्षों में यह उन खित्तों में शामिल हो जाएगा जो बहुत अच्छे ढंग से बाहम मुंसलिक हैं।
आज भारत दुनिया के टॉप सिविल एविएशन इकोसिस्टम में से एक मजबूत पिलर बना हुआ है। हमारे यहां सिविल एविएशन सेक्टर की ग्रोथ अभूतपूर्व है। सिर्फ एक दशक में भारत ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है। इन वर्षों में भारत एविएशन एक्सक्लूसिव से एविएशन इंक्लूसिव के वाला देश बन गया है।
जनाब मोदी ने कहा कि भारत आज आलमी शहरी हवाबाजी निजाम का एक मजबूत हिस्सा है और मुल्क में इस शोबे की जबरदस्त तरक्की देखी जा रही है। वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता 10 साल में भारत में हवाई अड्डों की तादाद दोगुना हो गई है और मुल्क एविएशन के ताल्लुक से शमूलियत वाला मुल्क बन गया है।
10 साल में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है और भी काम पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हम छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स को और आधुनिक बनाने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं।
वजीर आजम ने कहा कि अब छोटे शहरों और कस्बों तक से हवाई जहाज से सफर करने वाले मुतवस्सित तबके और जेली मुतवस्सित तबके के लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जबकि माजी में यह सिर्फ बड़े शहरों के ज्यादातर खुशहाल अफराद तक महदूद था। ओडिशा सरकार ने मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता खिदमात में साबिक अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन फराहम करने और उम्र में 3 साल की रियायत देने का फैसला किया है। साथ ही उन्हें जिस्मानी टेस्ट से भी छूट दी गई है। रियासत के वजीर आला मोहन चरण मांझी की सदारत में काबीना की मीटिंग में यह फैसला किया गया। इससे पुलिस महकमा जंगलात, एक्साइज, आग बुझाने के महकमे या रियासती सरकार की तायुन करदा किसी भी दीगर खिदमात में साबिक अग्निवीरों को वाफर मौके मिलेंगे। साबिक अग्निवीरों को 10% यकसां रिजर्वेशन देने का इतलाक सीधे भर्ती में ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी ओहदों पर होगा। यह रिजर्वेशन साबिक फौजियों के लिए दस्तियाब रिजर्वेशन के अलावा होगा बशर्ते के साबिक अग्निवीर मुतालिका भर्ती के जाब्तों में ओहदों के लिए मखसूस दरकार कम अज कम क्वालिफिकेशन को पूरा करते हों। भारत और चीन ने बकिया इलाकों से भी फौजियों की पूरी तरह पीछे हटाने के सिलसिले में तेजी के साथ काम करने और अपनी कोशिशें दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सियासी ब्यूरो के मेंबर और उमूर खारजा से मुतालिक मरकजी कमीशन के दफ्तर के डायरेक्टर वांग यी के दरमियान मीटिंग के दौरान यह इत्तेफाक राय हुआ। सिक्योरिटी मामलात के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स के आला सतह के अहदेदारों और कौमी सलामती के मुशीरों की मीटिंग के मौके पर यह दो तरफा बातचीत हुई। जनाब अजीत डोभाल ने मीटिंग के दौरान इस बात से मुत्तला किया कि सरहदी इलाकों में अमन इस्तेहकाम और हकीकी कंट्रोल लाइन का एहतराम बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ दोनों मुल्कों को मुतालिका बाहमी समझौतों, इकरारनामों और मुफाहमत पर पूरी तरह अमल करना चाहिए जिनसे माजी में दोनों सरकारों ने इत्तेफाक किया था। इधर एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि दोनों मुल्कों ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि भारत चीन बाहमी ताल्लुकात न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि खित्ते और दुनिया के लिए भी अहमियत के हामिल हैं। तरफैन ने आलमी और इलाकाई सूरतहाल पर भी तबादला ख्याल किया। वजारत खारजा ने कहा है कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के रूस के दौरे के बाद से रूस की फौज ने 35 भारतीय शहरियों को छोड़ दिया है। वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि तकरीबन 50 भारतीय शहरी अब भी रूस की फौज के साथ हैं और भारत जितना जल्द मुमकिन हो सके उनकी वापसी के लिए काम कर रहा है। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 45 भारतीय अफराद वापस आ चुके हैं। वजीर आजम के दौरे से पहले 10 भारतीय शहरियों को डिस्चार्ज किया गया था। अमरीका ने भारत के लिए यूएन सलामती कौंसिल में मुस्तकिल सीट के लिए अपनी हिमायत का इरादा किया है और सलामती कौंसिल में इस्लाहात के लिए मतन पर मबनी मुजाकरात की तायद की है। कुछ मुल्कों के दरमियान इख्तलाफ राय की वजह से इन मुजाकरात में रूकावट पड़ गई है। अक्वाम मुत्तहदा में अमरीका की मुस्तकिल नुमाइंदा लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि अमरीका जनरल असेंबली में वोटिंग के लिए एक करारदाद तैयार करने और अक्वाम मुत्तहदा मंशूर में मुमकिन तरमीम के लिए दीगर मुल्कों के साथ काम करने के लिए तैयार है। अमरीका ने भारत के साथ साथ जापान और जर्मनी के लिए भी सलामती कौंसिल की मुस्तकिल सीट के तई अपनी हिमायत को दोहराया है। अमरीका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए मदद करने की बिना पर चीन की तीन कंपनियों, पाकिस्तान की एक कंपनी और चीन के एक शहरी पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने ऐलान किया है कि पीचिंग के एक इदारे ने शाहीन सुअम और अबाबील मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली बड़ी रॉकेट मोटर्स के टेस्ट के लिए साजो सामान हासिल करने में पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स की मदद की थी। ये पाबंदियां 2005 के उस हुक्मनामे पर मबनी हैं जिसका मकसद बड़ी तबाही वाले हथियारों के फैलाव की रोकथाम करना है। इसके अलावा चीन की दो कंपनियों पर पाकिस्तान के इख्तराई साजो सामान के लिए आलात और तकनीक मुंतकिल करने की बिना पर पाबंदी आयद की गई है। चूंकि पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल से मुतालिक निजाम में शामिल नहीं है, इसलिए इन सरगर्मियों को बैनुल अक्वामी जाब्तों की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा जा रहा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल से मुतालिक निजाम भारत समेत 35 मेंबर मुल्कों का एक बैनुल अक्वामी प्रोग्राम है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नाशर किया जा रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले चंद रोज के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शदीद बारिश होने की वार्निंग जारी की है। उत्तराखंड में 7 जिलों में रेड अलर्ट जबकि रियासत के बाकी हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में तेज बारिश होने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मगरबी और तराई खत्ते में हुकाम सख्त चौकसी बरत रहे हैं। रियासत के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। इसके मद्देनजर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी चौकस और मुस्तैद हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
पिछले 48 घंटे में शदीद बारिश के बाद बुंदेलखंड खित्ते के जालौन जिले में कल दरियाए जमुना की एक मुआविन नदी में ताजा सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। मूसलाधार बारिश की पेशगोई के तनाजुर में पीलीभीत, कानपुर, जालौन और संभल समेत कई जिलों में इंतजामिया ने आज स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया है। रियासत के तराई और बुंदेलखंड के मगरबी हिस्से और वस्ती खित्ते में शदीद बारिश और ताजा सैलाब आने का इम्कान है। इस दौरान रियासत के बहुत से शहरों में पिछले 48 घंटे में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश से वाबस्ता वाकयात के सबब मथुरा, बुलंदशहर और मुरादाबाद में कमोबेश 5 अमवात होने की खबरें मिली हैं। गोरखपुर से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश से तबाहकारी हुई है। लगातार बारिश होने के सबब बांध लबालब भरे हुए हैं और दरिया तुगयानी पर हैं। कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरतहाल पैदा हो गई है और सरकार मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए राहत और बचाव कार्रवाई चला रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
مدھیہ پردیش میں ضلع انتظامیہ کی معاونت کے لیے NDRF اور SDRF کے ساتھ ساتھ بچاؤ اور امدادی کاروائی کے لیے ہیلی کاپٹروں کو بھی لگایا گیا ہے. ریاست میں کل 40 سے زیادہ مقامات پر بچاؤ کاروائی انجام دی گئی اور 700 سے زیادہ افراد کو سیلاب سے متاثر علاقوں سے باہر نکال کر دیگر مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. بڑی تعداد متاثرہ لوگوں کو سیونی اور جھبوا کے امدادی کیمپوں میں پناہ دی گئی ہے. گوالیار کے شہری علاقے میں فوج کی مدد لی جا رہی ہے. مدھیہ پردیش میں اب تک اوسط سے 14% زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے. بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
موسمیات محکمہ نے دلی اور قومی راجدھانی خطے میں آج تیز بارش ہونے کی وارننگ جاری کی ہے. دلی اور آس پاس کے علاقوں میں کل رات سے کہیں ہلکی اور کہیں اوسط بارش ہو رہی ہے. بھارتی موسمیات محکمہ نے مغربی اور مشرقی راجستھان میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے انتخابی مہم آخری ہفتے میں داخل ہو رہی ہے اور جموں ڈویژن کی وادی چناب سرکردہ لیڈران کی آمد کے لیے تیار ہے، جس کے تحت وزیراعظم نریندر مودی ڈوڈا کے سپورٹس سٹیڈیم میں کل ایک ریلی سے خطاب کریں گے. لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی کے بھی ڈوڈا میں ایک ریلی سے خطاب کرنے کا امکان ہے. نیشنل کانفرنس کے سرکردہ لیڈر عمر عبداللہ نے کل ضلع میں 3 ریلیوں سے خطاب کیا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
وادی چناب کے 3 اضلاع کے 8 اسمبلی حلقوں میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت 18 ستمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے، جن میں کشتواڑ، ڈوڈا اور رامبن شامل ہیں. وزیراعظم نریندر مودی ڈوڈا ضلع کے سبھی اسمبلی حلقوں کا دورہ کریں گے اور بی جے پی امیدواروں کے لیے ووٹ مانگیں گے. کانگریس پارٹی راہل گاندھی کی موجودگی کے ذریعے 2 سے 3 سیٹوں پر اپنی جیت کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گی. نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ وادی چناب میں اپنے امیدواروں کے لیے سرگرمی کے ساتھ انتخابی مہم کر رہے ہیں اور کانگریس پارٹی کے ساتھ دوستانہ مقابلہ ہونے کے باوجود وہ زیادہ سے زیادہ سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ڈوڈا کے 3 اسمبلی حلقوں میں 52 ڈوڈا ایسٹ اسمبلی حلقہ سب سے اہم ہے، جہاں 98582 ووٹر ہیں، جن میں 48032 خواتین اور 2 مخنث ہیں. اس حلقے کے ووٹروں کے لیے 171 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں. کل 9 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں. جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان.
کل چنئی میں جنوب ایشیائی جونیئر ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے دوسرے دن بھارت نے سونے کے 9 تمغے جیتے. انیشا نے خواتین کے ڈسکس تھرو مقابلے میں بھارت کے لیے پہلا سونے کا تمغہ حاصل کیا. انہوں نے 2018 کے اے باجوا کے 48.60 میٹر کے اس سے پہلے کے ریکارڈ کو توڑتے ہوئے 49.91 میٹر ڈسکس پھینک کر سونے کا تمغہ جیتا. نیرو پاٹھک نے خواتین کی 400 میٹر دوڑ میں 54.50 سیکنڈز میں دوڑ مکمل کر کے بھارت کے لیے سونے کا نوا تمغہ جیتا. یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان.
شکریہ ارجمن. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے. روزنامہ ملاپ نے وزیراعظم نریندر مودی کے پیرالمپکس میں تاریخ رقم کرنے والے کھلاڑیوں سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کیے جانے کی خبر کو پہلی بڑی خبر بنایا ہے. روزنامہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو پہلے صفحے پر سرخی بنایا ہے کہ ترنگ شکتی نے ساجیدار ممالک کے ساتھ تعاون مضبوط کیا ہے. جناب سنگھ نے فضائیہ کے کثیر قومی مشق ترنگ شکتی کو ساجیدار ممالک کے ساتھ تعاون، تال میل اور اعتماد کو مضبوط کرنے کا ایک موقع قرار دیا. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس، راشٹریہ سہارا اور انقلاب سمیت آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے سی پی ایم کے جنرل سیکرٹری سیتارام یچوری کے انتقال کی خبر کو اولیت دی ہے.
اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے شہری ہوا بازی سے متعلق دلی اعلانیہ منظور کیے جانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت اس دہائی کے آخر تک ایویشن کا ایک سرکردہ مرکز بننے کی سمت گامزن ہے. اوڈیشا سرکار نے مختلف خدمات میں سابق اگنی ویروں کو 10% ریزرویشن فراہم کرنے اور عمر میں 3 سال کی رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے چند روز کے دوران اتراکھنڈ، اتر پردیش، دلی، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں شدید بارش ہونے کی وارننگ جاری کی ہے. بھارت اور چین نے بقیہ علاقوں سے بھی فوجیوں کو پوری طرح پیچھے ہٹانے کے سلسلے میں تیزی کے ساتھ کام کرنے اور اپنی کوششیں دوگنا کرنے سے اتفاق کیا ہے. امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے مدد کرنے کی بنا پر چین کی 3 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.